इसकी दलील सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने फरमाया, ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के हक में अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगी, सुभान अल्लाह, सिफारिश करेंगी कि अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा और उसे जन्नत में भेज दे। जी, कौन है जो छोड़े? तीसरी चीज, सूरत मुल्क की तिलावत। इब्ने माजा की रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, सूरत मुल्क अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करती रहेगी हत्ता कि अल्लाह ताला उसे बख्श देंगे, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप देखिए कि सिफारिश सिफारिश है, हुक्म नहीं। जरूरी नहीं कि किसी की सिफारिश पूरी भी हो, लेकिन सूरत मुल्क के बारे में आते ही ये झगड़ा करेगी, ऐसे लग रहा है ना बड़े गुनाह रास्ते में आ रहे हैं, और ये सूरत कह रही है कि अल्लाह बख्श दे। अल्लाह ताला कहते हैं, नहीं देखो ये भी करता था, नहीं अल्लाह ताला बख्श दे। अल्लाह ताला कहेंगे, देखो ये भी इसमें, ये भी है। वो सूरत कहेगी, बख्श दो अल्लाह ताला, और बिलाखिर फिर अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे। एक रिवायत में कुरान पाक के लिए भी आता है, अल कुरान शाफ़ी व शफ़ा, कुरान ऐसा सिफारिश करने वाला है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, मुशफ़ा, जिसकी सिफारिश कबूल की गई। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और ख़ास तौर पे सूरह मुल्क तो रात को पढ़ने की तौफीक दे। चौथी चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करेगी, वो तहज्जुद का अहतमाम है। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक सहाबी को नसीहत फरमाई थी कि मेरी सिफारिश हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा किया करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि नफिल नमाज़ों में से तहज्जुद की नमाज़ सबसे ज़्यादा अफजल है। इसी तरह पांचवी चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करवाएगी क़यामत के दिन, वो सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 बार सुबह और 10 बार शाम मुझ पर दरूद भेजेगा, क़यामत के रोज़ उसे मेरी शिफ़ात हासिल होगी। ये तबरानी की रिवायत है, लेकिन याद रखिएगा, ये वही दरूद है जो मसनून, खुद अपनी मर्जी से बनाए हुए नाम नहीं, वो नहीं लफ्ज़ जो हमने बनाए या बड़ों ने बनाए। और दरूद क्या है, अगर बहुत कम वक्त भी है ना, तो जो लफ्ज़ आते हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। छठी चीज़ जिससे क़यामत के दिन सिफारिश होगी, वो क्या है, अज़ान के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगना। इसकी दलील क्या है, आपने फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनकर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته। ए अल्लाह, इस तौहीद की मुकम्मल दावत और कायम होने वाले नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, बुजुर्गी और मुकामे महमूद अदा फरमा, जिसका तूने इनसे वादा फरमाया है। क़यामत के रोज़ इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे ज़िम्मे होगा। ये सही बुखारी की रिवायत है, और सही मुस्लिम में आता है कि जो शख्स ये दुआ मांगेगा, इसके लिए मेरी शिफात वाजिब होगी। आपने एक बड़ी यूनिक चीज़ इस दुआ में देखी होगी कि कायम होने वाली नमाज के रब, क्योंकि रब का लफ्ज़ तो कई जगह है ना, रब हाज़ल बैत, लेकिन यहाँ नमाज का रब, मोहब्बत की बात है। सातवीं चीज़ क्या है, 3 मरतबा जन्नत का सवाल करना। इसकी दलील नबी सल्लम की रिवायत इब्ने माजा में है, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करेगा, उसके लिए जन्नत सिफारिश करती है। यानी सुबह उठ के 3 दफ़ा कह दें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करती हूँ, फिर जन्नत भी कहेगी, अल्लाह ये सुबह शाम मांगता है, दे देना इसको। इसी तरह आठवीं चीज़, 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह मांगना। आपने फरमाया, जो शख्स 3 बार जहन्नुम से पनाह मांगे, उसके लिए जहन्नुम सिफारिश करती है। ये भी इब्ने माजा की रिवायत है। क्या कहती है जहन्नुम, कि अल्लाह मुझे इसको मेरे में ना डालना, ये सुबह शाम मेरे से पनाह मांगता है, इसको मेरे साथ आना नहीं, मेरे साथ रहना नहीं, तो फिर अल्लाह तू इसको मुझसे दूर ही रख। कितनी प्यारी बात है, और कितना टाइम लगता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा। कितनी छोटी दुआ है, लेकिन आप देखिए कि शैतान भुलवा देता है, गाफिल करवा देता है, नहीं याद रहती, इसलिए कि वो तो चाहता ही नहीं कि हम जन्नत में जाएं और रब की रज़ा को हासिल करें। और इसी तरह नवी चीज़, मदीना में क़याम के दौरान मसाइब पर सब्र करना। आपने फरमाया, जो शख्स मदीना में क़याम के दौरान आने वाले मसाइब पर सब्र करेगा, मैं इसके लिए सिफारिश करूंगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो ये है वो 9 अमल जो कियामत के दिन अल्लाह की शिफात का बायस बनेंगे। अब हर इंसान अपने ज़र्फ और अपने ज़ौक के लिए जितना इस समंदर से हासिल करना चाहे कर ले, और जो चंद कतरों पे इक्तफा करे तो फिर वो उसकी मर्जी है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसके सामने सिफारिश करे मगर उसके इज़्ज़त से। अब जब आयत पढ़ेंगे अपनी नमाजों में, अपनी तिलावत में, तो इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे और इनकी रग़बत करेंगे। और कितने आसान है, कोई भी तो मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। ये हकीकत है कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि हर एक बेचैन होगा, परेशान होगा, और ऐसे वक्त में फिर अंबिया कराम भी अगर सिफारिश करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से करेंगे। ये देख लेना चाहिए कि सिफारिश होती क्या है और कैसे होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के नतीजे में जो जन्नत में लोग दाखिल होंगे, वो 2 किस्म के होंगे। पहली किस्म उन लोगों की होगी जो जहन्नुम में दाखिल हुए, फिर कुछ वक्त वहां रहे और फिर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे। और ये वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। शायद हम इस चीज को महसूस करते हैं कि नहीं, कि जहन्नुम में जाके निकालना ये और बात है, और जहन्नुम में दाखिल हुए बगैर वहां से निकल आना या उससे गुजर जाना ये मुख्तलिफ बात है। सिफारिश होगी लेकिन 2 तरह से। एक तो क्या है कि जहन्नुम में दाखिल किए बगैर जन्नत मिल जाए, और अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह ताला उन्हीं में से कर दे। लेकिन वो लोग जो अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, पहले जहन्नुम में जाएंगे फिर कुछ वक्त के बाद वहां से निकलेंगे। अब अगर आप देखें कि वो लोग जो जहन्नुम में दाखिल हुए बगैर जन्नत में जाएंगे, इसको अगर आप 4 हिस्सों में बांट लें, आप ऊपर लिखिए सिफारिश के नतीजे में जन्नत में जाने वाले, फिर इसके नीचे 2 डाउन एरो डालिए, एक वो है जो जहन्नुम में जाने के बाद फिर जन्नत में डाले जाएंगे, और दूसरे वो होंगे जो जहन्नुम में नहीं गए बराहे रास्त जन्नत में चले गए। यहाँ तक आपका टेबल पूरा हुआ। इसके बाद फिर आप वो लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे बराहे रास्त, यानी जहन्नुम में नहीं जाएंगे, इसके नीचे फिर 4 एरो डालिए। तो इंशाल्लाह मैप की सूरत में जब पॉइंट्स लेंगे तो बात ज़्यादा वाज़े होगी। पहला कौन सा गिरोह होगा? वो खुश नसीब गिरोह जो अल्लाह के नबी सल्लम की शिफात से बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन्हीं में करते हैं। दूसरा इसी के अंदर गिरोह कौन सा होगा? जिनका हिसाब किताब होगा लेकिन इनके आमाले सवालेहा मिजान में भारी होंगे, और अल्लाह के नबी सल्लम की शिफात से ये खुश नसीब गिरोह फिर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तीसरा वो गिरोह होगा जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी। ये लोग पहले मुकाम आराफ में ठहराए जाएंगे। इसका जिक्र इंशाल्लाह सूरत आराफ में डिटेल से आएगा, जहां ना जन्नत की नेमतें हैं और ना जहन्नुम का अजाब है। फिर वहां ये अपने क्याम के दौरान अल्लाह ताला से रहमत तलब करेंगे, और बिलाखर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से, आपकी सिफारिश से, अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल कर देगा। इसी के अंदर चौथी किस्म के लोग वो होंगे कि जिनकी नेकियां बुराइयों से कुछ कम होंगी इनका जहन्नुम में जाना तय हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के नतीजे में ये लोग भी जहन्नुम से बचा लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ये अकीदे तहाविये गरबी की किताब के अंदर से मैंने ये चार पॉइंट्स आपको बताए। ये आखिरी ग्रोह तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ग्रेस मार्क्स लेके पास होने वाला, किसी के 30 होते हैं ना तो 3 मार्क्स दे के फिर कहा जाता है चलो छोड़ो क्या फेल करना है, पास ही कर देते हैं। ये वो ग्रोह है, लेकिन ये भी बच गए, शुक्र है दोबारा नहीं देना पड़ा, उन मुश्किलों में नहीं पड़े जो फिर दोबारा टेस्ट देने की सूरत में होती। अब देखिए कि दूसरी किस्म के लोग जो अजाब भुगत के जाएंगे, जिनको कम या ज्यादा वक्त वहां रहना पड़ेगा, ये बड़े काबिले रहम लोग हैं, क्योंकि इनके गुनाह उनकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा होगी कि उनको जन्नत में भेजा जाए। अब देखिए कि गुनाह एक मैल है और जन्नत मैले लोगों की जगह नहीं है। अगर हमने दुनिया में अपने आप को गुनाहों से पाक ना किया ना, तो फिर वहां जाके पाक होंगे। अगर यहाँ दिलों के बग़ज़ और कीने दूर ना किए, तो पुल सरात पे भट्टी में पकाए जाएंगे। कुछ लोगों के गुनाह दुनिया में मुश्किलात पे ख़त्म कर दिए जाते हैं, कुछ को फिर निसा की सख्तियों में पाक किया जाएगा, कुछ को अजाबे कब्र में पाक किया जाएगा, कुछ के गुनाह मैदाने महशर में सख्तियों की वजह से माफ़ होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके गुनाह यहाँ भी माफ़ नहीं, तो उनको पुल सरात पे रोक लिया जाएगा, और कुछ वहां भी ना पाक हुए तो जहन्नुम में डाला जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गुनाह धब्बे हैं ना, कुछ पक्के दाग होते हैं कुछ कच्चे दाग होते हैं। जो पक्के हो जाते हैं ना स्टेन्स, फिर उनको पकाना पड़ता है भट्टी में ब्लीच डाल के। फिर वो लोग जो दुनिया में अपने आप को पाक नहीं करते, तौबा नहीं करते, अपने आप में तब्दीली पैदा नहीं करते, रब की बात को सुन के भी मानने की कोशिश नहीं करते, ऐसे लोगों को फिर जहन्नुम में पकाया जाएगा। खोट अलग हो, प्योर हो जाएगी चीज़। धातों को भी पकाते हैं ना ताकि खोट अलग हो जाए और खालिस चीज़ रह जाए। और कितनी देर कौन रहेगा ये अल्लाह को पता है। सिर्फ एक रिवायत से जो इशारा मिलता है कि एक फ़र्ज नमाज का सजदा जो जान के छुट गया, फ़र्ज नमाज और उसका सजदा, पूरी रकत नहीं आधी रकत छोड़ दी, तो उसके बदले में 80 हुक्बे जहन्नुम में चलना पड़ेगा। पूछा अल्लाह के नबी सल्लम हुक्बा क्या है, तो फरमाया दुनिया के 80 सालों के बराबर, 80 ईयर्स दुनिया के इक्वल हैं एक हुक्बे के, और 80 हुक्बास जहन्नुम में रहना पड़ेगा, तो कितने हो गए 6,400, 6,400 ईयर्स दुनिया के बराबर वहाँ रहना पड़ेगा एक सजदे को छोड़ने पे, अगर रब ने हिसाब कर लिए। माफ़ कर दे उसकी शान है, लेकिन कानून यही है, लॉ यही है, शिक यही है उसके कानूनों की। सूरत नाजियात में आता है लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो उसमें मुद्दतें रहेंगे, तो वो अहकाब हुकुम की जमा है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें ना करें। तो अब यहीं से देख लें कि सजाएं कितनी लंबी होंगी। दुनिया में होता है ना, ये काम करोगे तो 1 साल सजा, ये करेंगे तो 2 साल, ये करेंगे तो 4 साल। इसी तरह अल्लाह ताला के पास भी कुछ सजाएं हैं, तो वो लोग जो जहन्नुम में जाएंगे अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको नबी सल्लम की सिफारिश से जन्नत में दाखिल करेगा, और कुछ अरसा तक उनके माथों पर लिखा रहेगा। इसी तरह देखिए जो लोग कम गुनाह करेंगे उनको आपकी शिफात जल्दी नसीब होगी, और जो ज़्यादा गुनाह करेंगे उनको देर से नसीब होगी। लेकिन बहरहाल फिर आखिर में वो लोग भी जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे जिनके दिलों में राई बराबर या इससे भी कम ईमान होगा। क्या पता चला? सिर्फ मैंने शऊर को बेदार करने के लिए ये बात आपके साथ शेयर की। क्या एक बात तो इससे ये सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लम की शिफात किसी शख्स को ईमान और अमल सवाले से बेनियाज नहीं कर सकती। ये नहीं सोच सकते कि वो बख्शवा देंगे और हम बख्शे जाएंगे। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि शिफात का तमाम तर दारोमदार ईमान और अमल सवाले पर होगा। जितना ईमान मजबूत होगा, जितने अमल साले अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, उतनी जल्दी आपकी शिफात मिलेगी, और जिसका ईमान और अमल साले कमजोर होंगे, उतनी ही देर से आपकी शिफात मिलेगी।